संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौ प्रक्षालित सकल भूतल कलं मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो निरतम्। अज्ञान्तिमरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः, परम्पराचारिगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रकपर्णां मोक्षशास्त्रणां देयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा। तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमास्वामी आचार्यदेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिहन्तभासि यत्तं गणकरदेवीं गन्त्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकौसुकोदसालुचिम् अङ्गुवङ्गपहिन्ये पाहुने प्रियं सुत्पणिमाणि भोगे चूल्या शिवसुतयतुविधं काह्यं सयानिच्छुकालं चे पूजयन्दामिनि मनसामि दुःखकोकमुखोयिलासुगैं समायि मण्डं जन्मसम्पत्तिभोमुच्छं। नमोऽस्तु प्राणेक्षी साध्यविलयं सकलकरं चार्दं वा पूजावन्दनास्तप्समितं श्री आचार्यभक्तिकं करोमि। श्रुतिजलधिपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतीभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुके कुशले धम्मायरी सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेन या तरन्ति संसारसायरं घोरम् छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्म मरणं न पाविन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रगोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करमाभिरतास्तपो धनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनघटा कुन्तु मां साधुवा। गुरुवा पाञ्चिनो नित्यं ज्ञानदर्शन्नायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका निशायवन्ते हरिभक्तिकौसुगोकोदसालोचिं समनानुसमुदंसुसंचरयुत्तानं पञ्चविहाचारणमैर्याणम् आयराधिसुदनानोपदेशाणं वध्यायाणं तिरणगुणपालनयाणं सबुसाहुनं सयानिचकारं चे पूजयन्दामि। दुःखकोकमुखोयिलासुगैवं समायुनं जन्मसम्पत्तिभोमच्छम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये महावीर भगवान् की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। तत्वार सूत्र में नौवें अध्याय के कुछ सूत्र रह गए और दसवां अध्याय ये अपन पूरा करते हैं। चार प्रकार का ध्यान होता है, जिसमें से दो प्रकार का ध्यान तो संसार का कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और दो प्रकार का ध्यान मोक्ष मार्ग का कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जाता है, भगवान की आज्ञा जैसी है उस पर विश्वास रखना, वो आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। और संसार में सब जीव अपने सुख दुख का फल पाते हैं, कर्मों का फल भोगना पड़ता है सबको, ऐसा विचार करना ये विपाक विजय है। जो जीव बुरे मार्ग पर जा रहे हैं वे कैसे सच्चे मार्ग पर आए, सब जीवों को सच्चा मार्ग मिले ऐसा विचार करना, ये भी अपाय विजय नाम का। और तीनों लोकों के स्वरूप का विचार करना, ये संस्थान विजय धर्म ध्यान की चर्चा हो गई। अब शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल ध्यान बिल्कुल विशेष ध्यान है। शुक्ल ध्यान का साक्षात फल क्या है? निर्वाण। धर्म ध्यान का फल क्या है? स्वर्ग। धर्म ध्यान के फल स्वरूप निर्वाण नहीं होगा, परंपरा से निर्वाण। तो साक्षात अगर निर्वाण होगा तो शुक्ल ध्यान से, और परंपरा से निर्वाण होगा तो धर्म ध्यान से। हाँ, ऐसा ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्ल ध्यान भी धर्म ध्यान ही है, ऐसा नहीं समझना, दोनों ध्यान धर्म हैं, धर्म ध्यान भी और शुक्ल ध्यान भी। लेकिन धर्म ध्यान में उतना कंसंट्रेशन नहीं है जितना कि शुक्ल ध्यान में है, और शुक्ल ध्यान सबको नहीं होता। क्या कह रहे हैं? शुक्ले चाद्य पूर्व विदा। शुक्ल ध्यान तो पहले के दो शुक्ल ध्यान, चार शुक्ल ध्यान होते हैं, पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ऐसे जो है चार शुक्ल ध्यान है। नाम कठिन है पर उसको अपन समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। शुक्ल के मायने हैं निर्मल, धवल, जिसके करने से हमारा जीवन निर्मल और धवल हो जाता है, वो शुक्ल ध्यान है। ऐसा उदाहरण दिया जैसे कि कपड़े में साबुन सोडा लगाने से कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, इसी तरह जिसके द्वारा कर्मों से रहित हो जाती आत्मा उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान जिसको हो जाए तो नियम से फिर उसका मोक्ष हो ही जाएगा। ऐसा ये छपक श्रेणी और उपसक श्रेणी में दोनों में होता है, पूर्ववित को होता है। पूर्ववित कौन कहलाएंगे? देखो 11 अंग और फिर 12वें अंग के भेद 5, उसमें से एक पूर्व है, उस पूर्व के भी 14 भेद हैं। तो ये कह रहे हैं कि 11 अंग का तो पूरा ज्ञान है, और फिर 12वें अंग में पूर्व में 14 पूर्व का जिसको ज्ञान है, मतलब सीधी बात श्रुत केवली महाराज को ही शुक्ल ध्यान होगा। सभी जीवों को शुक्ल ध्यान नहीं होता है। मुनि महाराज जो कि श्रेणी में चढ़ जाते हैं अपने कर्मों का उपशम करके या कि क्षय करके, तो दोनों श्रेणी होती हैं, उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी। उसमें ये आचार्य मानते हैं उमा स्वामी कि 8वें गुण स्थान से, मतलब चपक श्रेणी या उपशम श्रेणी को 8वां गुण स्थान कहते, वहां से शुरू होता। इन दोनों श्रेणियों में शुक्ल ध्यान हो जाता है। कोई कोई आचार्य वीरसेन स्वामी मानते हैं कि 11वें गुण स्थान में पहुंचकर ही शुक्ल ध्यान होता है। ये थोड़ा सा समझने की चीज है। चला गया लाइट, आवाज आ गई उसकी। परे केवली ना, जो बाद के दो शुक्ल ध्यान हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ने ये केवली भगवान को होते हैं। क्या होता है कि पहले के दो शुक्ल ध्यान के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तो चार घातिया कर्मों का नाश हुआ तो केवल ज्ञान हो गया। तो पहले दो शुक्ल ध्यान का फल क्या है? केवल ज्ञान। और फिर केवल ज्ञान के बाद में अब सिद्ध बनना है, तो सिद्ध बनने के लिए दो शुक्ल ध्यान और करना पड़ते, किसको? केवली भगवान को। उपचार से है, वास्तव में तो वे आत्मा में स्थित हो ही गए, अब उनको अलग से क्या ध्यान करना। लेकिन कहते हैं अपन उसमें पढ़ते ना कि फिर भगवान ने समोषण छोड़ करके योग निरोध कर लिया। ये क्या है योग निरोध? मतलब सबसे डिटैच होकर के और फिर अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, और उसके माध्यम से उनके सारे जो शेष बचे कर्म हैं चार, वे भी नष्ट हो जाते हैं और सिद्ध बन जाते हैं वो इस तरह से। इसलिए परे केवली ना, बाद के दो शुक्ल ध्यान केवली भगवान के होते हैं। अब नाम गिना रहे हैं, पृथक त्वयिकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ये चार वाले एक योग वाले काय योग वाले वाले होते हैं। मतलब तीनों योगों को मन वचन काय का परिवर्तन करते हुए जिस ध्यान को किया जाए, थोड़ी देर मनोयोग, फिर वचन योग, फिर काय योग आ गया है। योग समझते, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। मन के माध्यम से होने वाले परिस्पंदन को मनोयोग कहते, वचन के माध्यम से होने वाले को वचन योग कहते, शरीर के माध्यम से होने वाले आत्मा के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं, और कुछ नहीं विशेष कठिन। तो ऐसे तीनों काय योग, तीनों मन वचन काय योग में परिवर्तन करते हुए जो शुक्ल ध्यान होता है वो पहला शुक्ल ध्यान, फिर तीनों काय योग में से किसी एक काय योग के आलंबन से ले करते हैं तो वो एकत्व वितर्क है, और फिर अकेले सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रति क्रिया निवर्तिनी, तो तीसरा वाला शुक्ल ध्यान काय से हो अकेले काय योग के माध्यम से, और बाकी सब का निरोध कर दिया। और चौथे में आयोग, चौथा शुक्ल ध्यान तो बहुत थोड़े से समय के लिए, जितने समय में अपन आ ई ऊ री ली ये पांच ह्रस्व अक्षर बोलते हैं उतने समय में, और ये शुक्ल ध्यान का फल प्राप्त हो जाता, सिद्ध बन जाते हैं, बहुत छोटा सा समय है। इसलिए कह दिया कि आयोग अवस्था में ही चौथा शुक्ल ध्यान होता है। अब देखो, एक आश्रय सवितर्क पीचारे पूर्वे, पहले के दो जो है आश्रय वाले ज्ञान हैं और सवितर्क होते हैं और अविचार। आश्रय किसका लेंगे? श्रुत ज्ञान का, श्रुत के किसी पद का आलंबन लेके उसी के चिंतन में लीन हो गए, मन से भी वचन से भी और काय से भी तीनों में परिवर्तन करते हुए है अगर, तो पृथक वितर्क, और परिवर्तन नहीं कर रहे तो एकत्व वितर्क। और अब कह रहे हैं कि सवितर्क है और सविचार है, दो आश्रय वाले हैं, सवितर्क हैं और सविचार। अब अलग इनको बताएंगे एक एक सूत्र में। अविचारम द्वितीयम, दूसरा शुक्ल ध्यान तो अविचार होता है, तो फिर वितर्क किसे कहते हैं और विचार किसे कहते हैं, ये भी तो बताओ। तो दो सूत्र अलग से रख दिए, सवितर्क वो वितर्कम श्रुतम, वितर्क का मतलब है श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ध्यान में लीन होते हैं, इसी को वितर्क कहते हैं। और विचारो, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, परिवर्तन करते रहते हैं द्रव से द्रव्यांतर में, पर्याय से पर्यायांतर, गुण से गुणांतर। अभी एक द्रव का विचार कर रहे थे फिर दूसरे का करने लगे, किसी द्रव की पर्याय का विचार कर रहे थे दूसरी पर्याय का करने लगे, किसी द्रव के एक गुण का विचार कर रहे थे अब परिवर्तन कर दिया, इस तरह से जो है विभिन्न प्रकार से, तो ये कहलाता है वितर्क। और व्यंजन और योग, इन सब में परिवर्तन होता रहता है, जिस शुक्ल ध्यान में उसको सवितर्क और सविचार कहते हैं। पहले का जो ध्यान है वो उसमें आश्रय वाला भी है और सवितर्क और सविचार है। पृथक वितर्क में श्रुत के आधार पर किसी एक द्रव या पर्याय है उसका चिंतन करते हैं, ऐसा करते हुए जो द्रव गुण पर्याय हैं उन सब, और योग का और शब्द का, व्यंजन का मतलब है यहाँ पर शब्द, किसी भी श्रुत के एक पद को लेकर के वो आलंबन लिए रहते हैं जो कि नहीं बदलता, उसे एकत्व वितर्क, जिसमें बदल जाता उसे पृथक वितर्क कहते हैं, जिसमें नहीं बदलता तो उसको एकत्व वितर्क कहते हैं। सूक्ष्म क्रिया में तो योग का निरोध कर देते हैं, दूसरे सब योगों का अभाव करके सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान किया जाता है। सब में आत्मा का ही ध्यान होता है, बहुत मुश्किल है, कभी जोर से बोलना पड़ता है कभी धीरे बोलना पड़ता है। और विपरीत क्रिया निवर्ति काय योग के निमित्त से अब सूक्ष्म काय योग उसमें भी, और उसमें स्थिर होकर के बाकी सबका निरोध कर दिया और थोड़े से जाते हैं। सम्यक दृष्टि शावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोक्षपकोप शमकोप शांत मोक्षपक्षीण मोजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। ये निर्जरा का क्रम दिया है, कैसे कैसे जीव अपने कर्मों की निर्जरा ज्यादा ज्यादा करते जाते हैं। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि हो जावे तो जितनी मिथ्यात्व अवस्था में निर्जरा करता था उससे असंख्यात गुनी निर्जरा सम्यक दर्शन होने पर होती है। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो हमारी निर्जरा का रेट कितना बढ़ जाता, असंख्यात गुना बढ़ गया। और सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई श्रावक की व्रत ले लेवे तो उसकी निर्जरा सम्यक दर्शन से भी अधिक असंख्यात गुनी होने लगेगी, ये ध्यान रखना। एक चीज और है, जब सम्यक दर्शन होता है तब तो असंख्यात गुनी निर्जरा होती है, लेकिन पूरे जीवन भर निर्जरा नहीं होगी सम्यक दर्शन के साथ, एक ही बार होती है। लेकिन अगर कोई व्रत ले लेवे तो फिर पूरे जीवन भर निर्जरा होए, ये इतना बेनिफिट व्रतों का मिल जाता है, इसकी कोई व्याख्या नहीं करता। सम्यक दर्शन होने पर तो सिर्फ सम्यक दर्शन जब होगा अंतर्मुहूर्त के लिए तब उसमें निर्जरा होगी असंख्यात गुनी, लेकिन अगर उसके साथ कोई व्रत ले ले, अनुव्रत ले ले, तो उसकी पूरे जीवन पर्यंत असंख्यात गुनी निर्जरा होगी उस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। और फिर बाद में अगर कोई महाव्रत ले ले तब तो विरत महाव्रती है तो उसके उससे भी ज्यादा असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। और अगर कोई अनंतानुबंधी कषाय की विषय योजना कर देवे तो उस विषय योजना करने वाले के उससे भी ज्यादा असंख्यात गुनी, विषय योजना मतलब समझते, जब अनंतानुबंधी कषाय के क्रोध मान माया लोग इन चारों को कन्वर्ट कर देते हैं परिणामों के विशुद्धि के माध्यम से, काय में 12 कषायों में उसको परिवर्तित कर दिया तो वो विषय योजना कहलाएगी। अंतर्मुहूर्त तक वो फिर अब अनंतानुबंधी उदय में नहीं आएगी। ऐसा करते हैं जब बहुत पुरुषार्थ लगता है तब असंख्यात गुनी निद्रा होती। और फिर अगर दर्शन मोहिनी की छपना कर देवे, उसका पूरे से क्षय ही कर दिया। अब दर्शन मोहिनी मतलब मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का क्षय कर दिया तो फिर और ज्यादा असंख्यात गुणी निद्रा। और अगर कोई उसका उपशम करे, उपशम कब करेगा, सातवें गुण स्थान में, छपना तो चौथे गुण स्थान में भी हो सकती, इसलिए उससे ज्यादा कहाँ होगी, जब कोई मुनि महाराज जी और अपने कषायों का उपशम करके और उपशम श्रेणी में चढ़ रहे हैं तब असंख्यात गुणी। और अगर जब भी अपनी सब कषायों को उपशम कर दें और 11वें गुण स्थान में पहुंच जाए तो उससे भी असंख्यात गुणी। और अगर भी छपना कर रहे हैं तो 11वें गुण स्थान में जितनी असंख्यात गुनी है एक छह करके आगे बढ़ने वाले मुनि महाराज के 8वें गुण स्थान में उससे भी अधिक हो जाएगी अगर छह करके चलते हैं तो। और जब उनके सब कषायें क्षीण हो गई, 12वें गुण स्थान में पहुंच गए तो क्षीण मोह उस समय असंख्यात गुनी और होती है। फिर उसके बाद वे जिनेन्द्र भगवान बन गए अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तब तो और असंख्यात गुनी होती है। इस तरह से निर्जरा बढ़ती जाती है, मतलब संबर पूर्वक निर्जरा की चर्चा है यहाँ पर। ऐसी निर्जरा तो अपन को भी होती, बंधते भी रहते और निकलते भी रहते, जैसे हाथी ने स्नान करो और फिर बाद में लोट गाओ वो धूरा में, सो फिर ज्यों को त्यों। हाँ, अपन का हाथी के स्नान जैसा तो है, श्रावक का तो लिखा है कि श्रावक घंटे भर तो बढ़िया ठाट बाट से पूजा करता है फिर 23 घंटा और पाप बांध लिए सुबह लूट गाओ फिर ज्यों को त्यों। जितनी घंटा भर उसने जितनी निर्जरा करी वो कर्म बंद तो 23 घंटा करने, रेट ऑफ डीके तो कम है, बंधन बहुत है, 23 घंटे तो बंद कर रहा है, एक घंटे में कितनी निर्जरा करेगा वो, तो वैसी निर्जरा नहीं। जो संवर पूर्वक निर्जरा करते हैं वो निर्जरा क्रमशः असंख्यात गुनी असंख्यात गुनी इस तरह से। अच्छा अभी और रह गए दो सूत्र, पुलाक वकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा। मुनि महाराज जी 5 प्रकार के होते हैं, ये इसकी चर्चा कर रहे हैं। पुलाक मुनि महाराज कौन कहलाते हैं, पुलाक वो हैं जो सार भाग से रहित होते हैं। ध्यान रखना, निंदा का भाव नहीं लाना, ऐसे मुनि महाराज जी भी हो सकते हैं और ये भी मोक्ष जाते हैं, ये पहले ध्यान रखना। भावलिंगी होते हैं, जो द्रवलिंगी भावलिंगी की चर्चा करती है चलती ना कि बाहर बाहर से मुनि है भीतर तो वैसे भाव ही नहीं है। द्रवलिंगी भावलिंगी का मतलब क्या कि बाहर से तो वेश मुनि का है लेकिन भीतर वितरागता नहीं है, उनको कहेंगे द्रवलिंगी। और जो बाहर से भी निर्विकार हैं और भीतर भी वितरागता है वे कहलाएंगे भावलिंगी। तो ये सब जितने भी बता रहे हैं 5 भावलिंगी हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी बाहरी क्रियाओं में कमी रह जाती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि जो पुलाक नाम के मुनि महाराज जी हैं वे ऐसे हैं जो कि अपने मूल गुणों को भी पूरा नहीं पालते और उत्तर गुणों को तो बिल्कुल नहीं पालते। बताओ आप, उत्तर गुण कौन से कहलाते, परिचय सहन करना, 12 प्रकार के तप करना, ये उत्तर गुण कहलाएंगे, वो मूल गुण 28 मूल गुण, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन पांच समिति, पांच इंद्री विजय, छह आवश्यक और सात शेष गुण, ये 28 मूल गुण है। तो कहते मूल गुणों में भी दोष लगा देते हैं और उत्तर गुण का तो पालन नहीं करते, ये पुलाक नाम के मुनि महाराज कहलाते हैं, पर इनका भी मोक्ष हो जाता है, ध्यान रखना। और वकुश नाम के क्या है, चित्र विचित्र व्यवहार रहता उनका, कैसा चित्र विचित्र, व्रतों का तो पूरी तरह पालन करते हैं लेकिन थोड़ा सा शरीर को साफ सुथरा बनाने की इच्छा इनके अंदर रहती है और अपने उपकरण को संभालत रहे, जब पिछली तनक अच्छी ऐसी कर लो, जब खराब हो गई दूसरी बना लो, इतना ही, इतना उनको थोड़ा राग रहता और अपने शिष्य गणों के प्रति विशेष अनुराग रहता है, वही उनका परिवार है। तो कि इन सब में जो है थोड़ा सा दोष लगाते हैं बाह्य क्रिया, लेकिन अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं, तब वो कहलाएंगे बकुश नाम के मुनि महाराज। स्वाध्याय के समय बताओ अब का समझाएं, त्यागी व्रतियों को तो कछु नहीं कह सकते। कुशील, अब कुशील नाम सुनकर के ऐसा लगेगा कि महाराज जी कुशील शब्द तो खराब जैसा शब्द है, नहीं, ये कषाय कुशील हैं, जिन्होंने अपनी कषायों को नष्ट करके अकेले संजुलन कषाय रह गई उनकी और संजुलन कषाय को नष्ट करने जा रहे, श्रेणी में चढ़ने वाले मुनि महाराज हैं ये ध्यान रखना, आठवें गुण स्थान वाले इतने ऊंचे, उनका नाम है प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, दो प्रकार के, जिनकी अभी परिग्रह में आसक्ति नहीं घटी। मूल गुण उत्तर गुण का तो बिल्कुल बढ़िया पालन करते हैं, कभी कभी उत्तर गुणों के पालन करने में थोड़ा दोष लगा देते हैं, पर हैं प्रतिसेवना कुशील। प्रतिसेवना यही हो गई कि जो रख रखा है उसमें थोड़ी आसक्ति हो गई, अपने पिछली कमंडल और इनमें थोड़ी सी बनी रहती है, बस वही उन देखो आसक्ति हो जाए तो जो ही परिग्रह हो जाए, इतना ही है फर्क और कुछ नहीं, थोड़ी सी के नहीं हमारा है इस तरह का भाव। और जो अन्य कषाय पे तो विजय प्राप्त कर चुके हैं, बाकी सब कषाय जीत ली, अकेली संजुलन कषाय शेष रह गई, अत्यंत अल्प कषाय आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में, उनको कहते हैं कषाय कुशील। ये सब श्रेष्ठ मुनि महाराज हैं और निर्ग्रंथ, जिनके राग द्वेष का तो अभाव है, अब बस अंतर मुहूर्त के बाद जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। अब बताओ निर्ग्रंथ शब्द जो है छोटा मोटा शब्द नहीं है, निर्ग्रंथ मुनि महाराज वो कहलाएंगे। हम इसलिए बार बार आपको कहते हैं कि ये टाइटल वाइटल जो लगाते ना अपने को, क्योंकि इससे लगता है कि अज्ञानता है श्रावक की, बहुत सारे विशेषण जी देखो तो विशेषण कितनी विशेषता वालों को लगाए जाते जी विशेषण, और अपन चाहे जो उनके संग विशेषण लगा दे कि जी फलाने और जी फलाने। अब निर्ग्रंथ देखो अंतर मुहूर्त बात उनको केवल ज्ञान हो रहा हो, बेक आउट निर्ग्रंथ, अबे अपन को तो कछु नंबर ही नहीं है, केवल ज्ञान एवल ज्ञान तो छोड़ो। नहीं अगर देख विचार करने की चीज, हम निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे, लेकिन अपन को ज्ञान हो तो फिर अपने को उसका महत्व समझ में आता है कि देखो निर्ग्रंथ अवस्था तो वो है, अपन तो सिर्फ निर्ग्रंथ अवस्था का थोड़ा सा अभी माने बाहर बाहर पालन कर रहे हैं, वास्तव में करना क्या है, वो निर्ग्रंथ अवस्था है जो कि साक्षात मोक्ष देने वाली, अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान। और स्नातक, स्नातक तो आज बैचलर को कहते हैं, ग्रेजुएशन हो गया तो स्नातक नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, स्नातक कौन कहलाएंगे, स्नातक जो हैं जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया सर्वज्ञ भगवान को स्नातक कहेंगे। और सर्वज्ञ बन करके जब, और चौदहवें गुण स्थान में तो आचार्य श्री कहते कि अभी उनने बीए कर लिया, अब स्नातकोत्तर, फिर उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन। और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान तो लेक्चरर हो गए, वो उसके भी बाहर रिसर्च पीएचडी हो गई उनकी, इस तरह से ऐसा समझे अपन इसको। तो स्नातक महाराज कौन से हैं, केवल ज्ञानी महाराज हैं। तो छठे गुण स्थान से लेकर तेरहवें गुण स्थान तक सब निर्ग्रंथ, ये सब स्नातक निर्ग्रंथ था, ये पांचों निर्ग्रंथ हैं, अर्थात अंतरंग और बहिरंग ग्रंथियों को, परिग्रह को जिन्होंने छोड़ दिया है। धीरे धीरे विशेषता आती जा रही, संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग ले शोभ पाद स्थान विकल्पता साध्या। अब इनमें भेद प्रभेद है, संयम की अपेक्षा से पुलाक बकश बकुश और प्रतिसेवना कुशील उनके सामायिक और छेदोपस्थापना नाम का संयम होता है। कषाय कुशील के यथाख्यात चारित्र को छोड़कर के बाकी सब चारित्र चार संयम हैं उनके पास, और जो निर्ग्रंथ हैं और स्नातक हैं उनके तो यथाख्यात चारित्र है। इस तरह से देखा जाए तो चारित्र के मामले में थोड़ा डिफरेंस है। श्रुति की वजह से तो उत्कृष्ट रूप से पुलाक और बकुश और कुशील ये अभिन्न दस पूर्व के धारी होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व में से 11 अंग और 10 पूर्व अभिन्न 10 पूर्व इतना ज्ञान होता है इनके लिए, पुलाक बकुश और कुशील नाम के मुनि महाराज के लिए। और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ ये तो 14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि हैं सब, ये ध्यान रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त और जगन रूप से देखा जाए तो आचार वस्तु मात्र मतलब पंचाचार का ज्ञान रहता है पुलाक बकुश इनके लिए, पुलाक के लिए, बकुश कुशुल निर्ग्रंथ के लिए 5 समिति 3 गुप्ति वाला ज्ञान कम से कम इतना तो रह गई। और स्नातक, स्नातक तो सर्वज्ञ भगवान है, उनको तो सब ज्ञान है। प्रतिसेवना पुलाक नाम के जो मुनि महाराज हैं वो 5 महाव्रत और रात्रि भोजन आदि में से किसी एक व्रत में दबाव के कारण उसकी विराधना भी कर देते हैं। विराधना कर देते मतलब क्षति मना, मन में उनके भाव आ गया उस तरह का तो हो जाता। और बकुश नाम के मुनि महाराज उपकरण बकुश मां नाम के अच्छे अच्छे उपकरण रखते हैं, सास संभाल में लगे रहते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर ये भाव आ जाता है। प्रतिसेवना वाले अपने मूल गुण का तो पालन करते पर उत्तर गुणों में थोड़ी कमी रख लेते हैं, यही प्रतिसेवना कहलाती तीर्थ की अपेक्षा। तो 5 प्रकार के मुनि महाराज सब तीर्थंकरों के तीर्थ काल में होते हैं, ये तीर्थ की अपेक्षा हो गया। लिंग की अपेक्षा भावलिंग और द्रवलिंग, तो 5 मुनि महाराज भावलिंगी होते हैं, द्रवलिंग की अपेक्षा से अंतर है। कोई 500 धनुष के हैं, कोई 3.5 हाथ के हैं, अधिक से अधिक 500 धनुष का बाह्य वेश देखा जाए अगर तो पिछी का मंडल अलग अलग रहेंगे सबके, तो वो भेद हो गया। लेकिन भावलिंग भीतर में सबके भावलिंग है। और लेशा की अपेक्षा से देखा जाए तो 3 लेशाएं होती हैं पुलाक के, वकुश और कुशील के तो 6 लेशाएं हो सकती हैं, कषाय कुशील के अंत की 4 लेशाएं हो सकती हैं। यहाँ पर जो अशुभ लेशा की चर्चा करी है तो उसमें लिखा है कि उपकरण और शरीर में थोड़ी आशक्ति होने से उनके लेशा में परिवर्तन आ जाता, वैसे तो सबके शुभ लेशा ही होती हैं। और अयोगी महाराज के तो कोई लेशा होती नहीं, वो तो उससे पार हो गए। उपपात की अपेक्षा से देखा जाए तो पुलाक मुनि महाराज अगर मरण करें तो 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाते हैं। बकुश और प्रतिसेवना कुशील मरण करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ मरण को प्राप्त हो तो सर्वार्थ सिद्धि चले जाते हैं। और ये तो उत्कृष्ट से जघन्य से सभी मुनि महाराज कम से कम सौधर्म स्वर्ग तो जाते ही हैं, और जो स्नातक हैं वे तो निर्वाण ही पाते हैं, उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं। स्थान की अपेक्षा देखा जाए तो सबका एक सा स्थान नहीं है, संयम के स्थान सबके 10 मुनि महाराज भी बैठे हैं लेकिन सबके परिणाम अलग अलग रहेंगे। गुण स्थान एक ही है लेकिन उसमें भी कितना डिफरेंस रहेगा, तो एक गुण स्थान में भी बहुत असंख्यात भेद बन जाएंगे, उस अपेक्षा से ये कह दिया। ऐसा करके ये पूरा हो गया अपना 9वां अध्याय। 10वें अध्याय के 10 सूत्र हैं। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। 9वें अध्याय में काय का वर्णन किया अपन ने, संबर और निर्जरा। अब 10वें में क्या करना, मोक्ष। तो कह रहे हैं मोह का क्षय होने से पहली बात, सबसे पहले काय का क्षय होगा, मोह का। फिर उसके बाद एक साथ कौन से कर्म का क्षय होगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, हाँ 3। इस तरह से 4 घातीय कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये सूत्र जी का अर्थ हो गया। ये अलग अलग इसलिए दिया क्योंकि पहले 10वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तब मोह का क्षय हो जाता, मोह का क्षय करके सीधे 12वें पहुंच जाते, और 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय इन तीनों का एक साथ नाश करके 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया। इस तरह से वो केवल ही हो जाते हैं। बंद हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण करम विप्र मोक्षो मोक्षः। और जब समस्त जिन परिणामों से बंद हो रहा था वे परिणाम समाप्त हो गए, और जितने कर्म बांधे थे उनकी निर्जरा हो गई। अब का बचो, कहती इसी अवस्था का नाम तो मोक्ष है। बंधवे को कछु उपाय रह नहीं गाओ, और जो इन बंधे थे उनसे मुक्त हो गए तो का हो ही गो काम पूरो है। जैसे कि जेल में से छुट्टी हो गई, अब बंधने का कोई उपाय नहीं है, वो पहले बंदी थी सुबह सब बाहर आ गए जेल से, अब का अब मुक्त कहलाएंगे। इसी तरह से ये भी समस्त कर्मों के क्षय से जो अवस्था प्राप्त होती उसे ही मोक्ष कहेंगे। देखो एक परिभाषा सीख ली अपन ने, मोक्ष किसे कहेंगे, समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम ही मोक्ष है। बच्चू मोक्ष जगह नोइया के होते पहुंच गए सो होगा मोक्ष, नहीं जैसे ही कर्मों का क्षय होता सो होता यह हो जात मोक्ष, फिर चले जात होते तक, अब का करें थे सबके बीच में रहे तो उनको दिक्कत हुई है, सपन अपने चलो होते हैं, अब जरूरत नहीं थे सबके बीच में रहने की, अब कुछ काम करना नहीं, जो काम था वो सब कर चुके तो फिर वहां सिद्धालय में विराजमान हो जाते। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम चा, अब जो है औपशमिक आदि सब भाव समाप्त हो गए, क्योंकि कर्मों का क्षय ही हो गया तो अब कर्मों के उपशम से होने वाले भाव काय को रहेंगे, तो जितने भी कर्म के आश्रित भाव हैं औदयिक भाव औपशमिक भाव ये सब समाप्त हो गए, एकमात्र क्षायिक भाव रह गया और भव्यत्व भाव। अब जीव को तो निर्वाण होएगा नहीं, भव्य को होएगा, सब जब निर्वाण होएगा तो फिर का भव्य और का अभव्य
कछु नहीं,
अब सिर्फ अकेले जीवत्व का अनुभव करते हैं और भव्य अभव्य सबसे परे हो गए, सारे भावों से पांचों भाव से अकेले शायक भाव को छोड़ करके और पारिणामिक भाव में जीवत्व को छोड़ करके सब समाप्त हो गया उनका। अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्या, अब उनके क्या रह गया, केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और अभी सिद्धत्व का कभी भी अभाव नहीं होता, ये हमेशा बने रहते, इतने भाव बने रहते, बाकी सबका अभाव हो जाएगा, इतने भाव तो उनके रहे आएंगे। अब कह रहे तदनंतर मूर्धम गच्छन्ता लोकांतात, और जैसे सारे कर्मों से समझ में आए तो फिर कहते संगत छेदात, जैसे कि एक तुमड़ा तुमड़ी होती ना लौकी का बड़ा रूप, इसको अपन क्या बोलते हैं आप यहाँ पर, तुमड़ा ही तो बोलते हैं आप, उसके ऊपर अपन मिट्टी लगा दो, मिट्टी लगा तो वजनदार हो गई, वजनदार हो गई तो नीचे डूब जाती है, और जैसे ही मिट्टी अलग भाई तो फिर ज्यों की त्यों ऊपर ऊपर ही आएगी कि और कहीं जाएगी, ऊपर ही। तो बस वही कह रहे हैं कि जैसे लेप से मुक्त हुई तुमड़ी अपने आप ऊपर आ जाती है, ऐसे ही कर्मों से रहित होने पर जीव अपने आप ऊपर की तरफ चले जाते, या फिर एरंड बीजवत बंदत छेदात, जैसे कि एरंड का बीज होता जिसको बच्चे क्या करते हैं वो सफेद सफेद सा उड़ता रहता ना, पकड़ लेते फिर फूंक देते फिर आना कल, ऐसा करते ना, वो चटक करके बीज जो है उसी में वही में रहते महाराज, वो में बीजा रहते, वो रूंगा रूंगा से तो रहते हैं, और वो के भीतर वो बीज है, वो उड़कर जैसे ही फटता है सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी वो उसका फल जिसमें रहता ना बीज वो फटता है तो उसमें से सब निकल करके उड़ जाते हैं। हाँ, मुख्य तो वही है पर बताना आवश्यक है कि ऐसा फट करके उसमें रुए रुए रहते उसके भीतर बीज रहता, बोड़ करके उड़ चला जाता, जहां तहां कहीं भी गिरेगा वहां उगाएगा फिर, पर फटते समय कहां जाता है, आजू बाजू नहीं जाता, सीधा ऊपर की तरफ जाता। तो एरंड का बीज जैसे फटने पर और ऊपर की तरफ जाता है, इसी तरह यह जीव भी बंद का अभाव होते ही साथ जैसे कोई ने पकड़ रखो तो छूटो जैसे ही सो ऊपर की तरफ चला गया। और एक एक और उदाहरण दिया तथा गति परिणामाच्चा अग्नि शिखावत, जैसे अग्नि की लौ कहाँ की तरफ जाती भैया, हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है, स्वभाव है उसका ऐसा, तथा गति ऐसी उसकी गति ही है, ऐसा उसका परिणाम ही है, इसी तरह मुक्त जीव का स्वभाव ही है कि वो ऊपर की तरफ गमन करता है, ये दोनों सूत्र। और फिर कहते हैं कि अच्छी बात है ऊपर चला जावे तो चले ही जावे, आगे आगे रुक क्यों जाता है, कहते धर्मास्तिकाया भावात, जहां तक धर्मास्तिकाय द्रव्य है वहां तक तो गमन होगा, अलोक आकाश में गमन हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय है ही नहीं, धर्म द्रव्य कहाँ है, वहां पर धर्मास्तिकाय कहो चाहे धर्म द्रव्य कहो, धर्म द्रव्य ही तो जीव पुद्गल को चलने में सहायक है, अलोक आकाश में तो धर्म द्रव्य है ही नहीं, इसलिए वही अलोक आकाश और लोक आकाश की जहां बॉर्डर है वहां जाकर के जीव मुक्त होने के बाद रुक जाता है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोध ज्ञान अवगाहनांतर संख्यालप भूतदा साध्या, सब जीवों का सिद्ध जीवों का स्वरूप तो सबका एक जैसा है, लेकिन अगर अतीत काल की अपेक्षा विचार करें तो कुछ बातें जानने की हैं, क्षेत्र की अपेक्षा देखें, अपन कहते ना कौन से क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं उस अपेक्षा से, तो वैसे तो देखा जाए तो वर्तमान में कहाँ हैं वे, सिद्ध क्षेत्र में हैं, लेकिन आत्म प्रदेशों या आकाश के प्रदेशों से सिद्ध होते हैं, और देखा जाए अगर तो मनुष्य लोक से सिद्ध होते हैं, और कहीं से सिद्ध नहीं हो सकते, ढाई द्वीप में इसी को मनुष्य लोक कहते हैं, यहीं से सिद्ध हो सकता कोई और कहीं से नहीं। उस अपेक्षा से क्षेत्र देखा जाए तो ढाई द्वीप से मुक्त होते, कोई पूछे कि मुक्त कहाँ से होते, तो कहती वास्तव में तो अपने कर्मों से मुक्त अपने आत्मा में ही मुक्त होते हैं, सिद्ध क्षेत्र पे पहुंच जाते, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ से सिद्ध हुए, तो कहते मनुष्य लोक से सिद्ध हुए। काल की अपेक्षा से देखा जाए तो एक क्षण में मुक्त हो जाते हैं, पर और अतीत काल की अपेक्षा देखा जाए तो अवसर्पणी काल में या उत्सर्पणी काल में, और उसमें भी जो है कौन सा काल, सुषमा दुष्मा के अंत समय में और दुष्मा सुषमा के प्रारंभ में, क्योंकि तीसरे काल के अंत में कौन से भगवान मोक्ष चले गए, चौथा शुरू नहीं हुआ था, आदिनाथ भगवान, और चौथे काल में तो जाते ही हैं। इस अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से उसमें जन्मे हुए जीव सिद्ध हो जाते हैं, गति की अपेक्षा से वर्तमान में तो उनकी सिद्ध गति है, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा देखो तो कौन सी गति से सिद्ध भाई, मनुष्य गति एक ही है उससे सिद्ध होंगे। और वेद की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो वैसे तो भगवान अपगत वेद हैं, वेद से परे हो गए हैं, लेकिन भूतपूर्व नए की अपेक्षा देखें तो कौन से वेद से गए, तो तीनों वेदों से जा सकते भाव की अपेक्षा, और द्रव की अपेक्षा कौन से वेद से, तो मनुष्य की, मनुष्य वेद से गए या पुरुष वेद से गए, हाँ मनुष्य वेद नहीं, पुरुष वेद, मैंने गलत कह दिया। इस तरह तीर्थ की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा ऐसा है कि तीर्थंकरों की रहते हुए मोक्ष गए या कि तीर्थंकर के काल में मोक्ष गए, इसकी अपेक्षा से देख लो तो तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध होने वाले जीव भी हैं, और जब तीर्थंकर का मोक्ष है उसके बाद भी जाने वाले कई जीव हैं। इस तरह से स्वयं तीर्थंकर होकर के गए हैं या बिना तीर्थंकर की अपेक्षा सिद्ध बने हैं, सब प्रकार के भेद बन जाएंगे तीर्थ की अपेक्षा। चारित्र की अपेक्षा से, तो चारित्र की अपेक्षा से तो वैसे वो चारित्र से अब पार हो गए सब पांचों प्रकार के, पर पहले की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र रहा और आखिरी में यथाख्यात चारित्र से ही सिद्ध बने को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बुद्ध हैं के बोधित बुद्ध हैं, किसी को के समझाने पर रत्नत्रय प्राप्त किया है या कि अपने आप ही प्राप्त कर लिया है, स्वतः ही बोध पाकर के भी सिद्ध हो जाते हैं, जैसे तीर्थंकर है उनको कोई उपदेश नहीं देता, अपने आप जो है और मोक्ष मार्ग अपना करके मुक्त हो जाते हैं, और अपन तपन के लिए तो दूसरे से जब ज्ञान प्राप्त होता है हैं तब मोक्ष होगा। तो इस तरह बोधित बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध, ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो सब केवल ज्ञानी ही सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, लेकिन भूतपूर्व नए की अपेक्षा देखा जाए तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाय पर्याय ज्ञान वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से देखा जाए तो सबसे जितना आखिरी शरीर है वही उनकी अवगाहना है, उससे कुछ थोड़ी न्यून होती है, जैसे ढांचे में अपन वो भर देते ना जब बनाते हैं चूड़ी वगैरह बनाते हैं लोग, सोना सोने वाले, तो उसमें वो भर देते मोम वगैरह, तो वो जो ढांचा बनता है उतना कम हो जाता अपना शरीर, जो आखिरी में सिद्ध जवन बनेंगे तो ये सब जितना जितना पोला है ना वो सब चिपक जाएगा, नाक में देखो पोला है वो सब खत्म, उतना स्पेस उतने छोटे हो जाएंगे, हाँ मोक्ष उतना कम, लगभग 1/3 कम हो जाता है, 2/3 बचता है, वो उनकी अवगाहना हो गई, मतलब उनका अपना हाइट विड्थ और लेंथ सब, इसको अवगाहना बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वर्तमान की अपेक्षा देखा जाए तो जो आखिरी का शरीर है वो, और अगर अतीत की अपेक्षा देखा जाए तो कम से कम 3.5 हाथ के और ज़्यादा से ज़्यादा 125 धनुष की अवगाहना वाले जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अंतर की अपेक्षा से देखा जाए तो निरंतर सिद्ध होते हैं और अंतर से भी सिद्ध होते, एक जीव के सिद्ध होने पर उसके बाद दूसरे समय में जब कोई सिद्ध होता है तो उसे निरंतर कहते, एक समय में एक सिद्ध हो गए उसके बाद तुरंत जो दूसरे सिद्ध हो गए इसको कहेंगे निरंतर, और जब कोई लगातार सिद्ध नहीं हो करके कुछ अंतराल से सिद्ध होता, बीच में गैप हो जाता, कोई सिद्ध नहीं हुआ, तो उसको कहते सांतर। संख्या की अपेक्षा एक समय में कम से कम एक जीव सिद्ध होता है, और अधिक से अधिक तो 108 जीव एक समय में सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मध्य के विकल्प बहुत सारे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 महीने का अंतर पड़ जाए अगर, तो 8 समय में 608 पूरे चले जाएंगे। तो एक समय में अप्रॉक्सीमेटली 108 इसलिए बना दिया ऐसा। अल्प बहुत की अपेक्षा देखा जाए तो सिद्ध होने वालों का सिद्ध क्षेत्र में अल्प बहुत तो बनेगा नहीं, वहां तो सब पहुंच गए। अतीत काल की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ तो जन्म सिद्ध हैं और कुछ संहरण सिद्ध हैं, दोनों प्रकार के। हरण करके दूसरे क्षेत्र में ले जा करके डाल दिया, वहां से सिद्ध हो गए। जिस क्षेत्र में जन्मते हैं उसी से सिद्ध हो जाए तो वो जन्म सिद्ध कहलाते, और जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुए वहां से दूसरी जगह जा करके सिद्ध हो गए तो उसको अन्य क्षेत्र में वो कहलाते हैं, संहरण वाले जिनको हरण करके चले जाते हैं। इसी तरह ऊर्ध्वलोक सिद्ध और अधोलोक सिद्ध। अब कैसे बनेगा? आकाश में कोई बैरी उठा करके महाराज को ले गया वहाँ पर, और उन ध्यान में लीन थे, वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया और वहीं के वहीं मोक्ष हो गया, तो ये ऊर्ध्वलोक सिद्ध कहलाएंगे। और किसी ने जा करके और महाराज को नीचे पटक दिया गहरे कहीं पर, वहाँ पर ही उन्होंने ध्यान में लीन थे, वहीं से मोक्ष, तो वो अधोलोक कहलाएंगे और कुछ नहीं है सर। और तिर्यक लोक तो है ही, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उसमें से अकेले ढाई द्वीप के बाहर तो ले ही नहीं जा सका, उसी को तिर्यक लोक कहेंगे। वहाँ पर हो जाते हैं कुछ जीव जो है, कोई को समुद्र में फेंक दिया वहाँ से सिद्ध हो गए तो वो समुद्र सिद्ध है। सबसे इसमें लिखा है कि समुद्र से सिद्ध होने वाले सबसे कम, दीपों से सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुने हैं। इस तरह से अन्य चीज़ों का विचार भी किया जा सकता है सिद्धों के बारे में। इस तरह भैया और अपन ने तत्पार सूत्र का मोटा मोटा अभ्यास कर लिया है। अब 9 बार नमोकार पढ़ लें इसका पूर्व समापन का काय उत्सर्ग। आज कहानी नहीं सुनाई प्रवचनों में, 1 बज गई आज की, उसे मंच पे कहाँ सुनाई? नहीं सुना यार, बजा ली आपने बता, नहीं सही, हम झूठी कह रहे हैं।
जाके मने भावना के मन में जैसी भावना होती है, कहते प्रभु मूर्ति देखी कैसे। मन की भावना की बात है। एक नगर में एक शराब का रहती थी, उनके कुहतों ने बाल बच्चे कछु हते नहीं, पैसा है तो कछु दिनों में पति भी चले बसे, अब अकेले आ गए। अकेली रह गई तो जब तक कर रही गई पत्नी चली, जब कछु कहूँ थोड़ी बहुत शरीर में परिवर्तन आओ, एक दिन सोचने लगी कि अब माँ पूरे नहीं थे, जितना हमारी आँख में छो जितना जो धन पैसा सब दूसरे उठा देगी, का करें अब। सवेरे को उठी तो उनने जितना भी सोनो चांदी पैसा नगद हुआ तो थैलियाँ अपनी बांधी और कपड़ों में लपेट लपेट कर बांध के कुटरिया बनाई। कुटरिया बना के अब सिर पर धरी, वजनदार हो गई पुटरिया, और सोच के जो घर मकान देखो मुझे सो करे का करने, अब कौन के जा रही अपने भज्जे भतीजों के जा रही चल। पुटरिया बहुत वजनदार हटी चलते न मन रहो तो डुकैया पे। इतने में एक घुड़सवार आता है पीछे, घुड़सवार आता है तो बुढ़िया खड़ी होती है।